मैं कह रही थी कि आज मैं रश्मि के घर गई थी तो आंटी ने मुझे कल फिर से आने को कहा और ये भी कहा कि कल मुझे आपके और अंशु के साथ जाना है और रात को वहीं रुकना भी है। आंटी कह रही थी शादी के बाद एक बार भी आप उनसे मिले नहीं हैं, बस इसीलिए वो चाहती हैं कि हम कल वहीं उनके साथ रुक जाएं। आरवी ने डरते डरते भी अपनी पूरी बात की और घबराई निगाहों से उसको देखने लगी। उसको डर था कि कहीं शान अब भड़क ना जाए। वहीं शान उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया। कुछ देर उसकी बात के बारे में गहराई से सोचने के बाद उसने थोड़ा उदास होकर कहा, सॉरी पर मैं वहां रुक नहीं पाऊंगा। मेरा नेचर नहीं है अजनबियों के साथ घुलने मिलने का। बेवजह मेरी रूडनेस से वो हर्ट होंगे। मैं वहां जाना भी नहीं चाहता था, पर रेहान की वजह से मुझे जाना पड़ेगा। पर वहां रुकना नहीं हो पाएगा मुझसे। हाँ, अगर तुम रुकना चाहो तो तुम रुक जाना। वैसे भी तुम्हारी दोस्त से मेरी बिल्कुल पटती नहीं है। हम एक जगह नहीं रह सकते, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अकेली ही उसके पास रुको। नहीं, मैं आपके बिना वहां नहीं रुकूंगी। मैं भी आपके साथ वापस आ जाऊंगी। मैंने बस यूं ही कह दिया। मुझे पता है आप अनजान जगह पर कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, इसलिए मैं आपको फोर्स भी नहीं करूंगी। अब आप जाकर कपड़े पहनिए, मुझे नीचे काम है। आरवी ने उसके हाथ से खाली कॉफी मग ले लिया और मुस्कुराकर वहां से चली गई। उसकी मुस्कान शान के लबों पर भी मुस्कुराहट ले आई। वो कपड़े लेकर वापस बाथरूम में चला गया। अब उसको अंशु से मिलना था, जिसके लिए वो जल्दी से नीचे जाना चाहता था। उसने जल्दी से कपड़े पहने और नीचे आने के लिए बढ़ गया। अब सब हॉल में मौजूद थे। अंशु इतने दिनों बाद लौटी थी तो सब उसको लाड कर रहे थे। अंशु की निगाहें खेलते हुए अनायास ही सीढ़ियों घूम गई। शान सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। शान को देखते ही अंशु का चेहरा खिल उठा। शान सीढ़ियों से नीचे उतरा ही था कि वो अपने नन्हे नन्हे कदमों से भागते हुए आकर उसकी टांगों से लिपट गई। शान के लबों पर गहरी मुस्कान फैल गई। उसने झुककर उसको अपनी बाहों में उठा लिया और प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोला, हमारी प्रिंसेस अपनी डैडी के पास आ गई। यस डैडी, आपको पता है अंशु ने डैडी को टू मच मिस किया, इसलिए अब बेबी कभी डैडी को छोड़कर नहीं जाएगी। अंशु ने इतनी मासूमियत से कहा कि शान की मुस्कान बड़ी हो गई। उसने उसके मोटे मोटे गाल को हल्के से खींचते हुए कहा, अच्छा तो अब आप कभी नानी होम नहीं जाएंगी? नो डैडी, बेबी ना अब डैडी को भी अपने साथ लेकर नानी होम जाएगी और वहां पर हम टू मच फन करेंगे। वहां मौजूद हर इंसान बड़े ध्यान से दोनों की बातें सुन रहे थे। जैसे ही उन्होंने अंशु की ये बात सुनी, सबकी हंसी छूट गई। शान पहले तो आंखें बड़ी बड़ी करके उसको देखता रह गया कि उसकी इतनी सी बेटी इतना दिमाग चलाती है। फिर उसकी समझदारी और अपने लिए उसका प्यार देखकर वो एक बार फिर मुस्कुरा दिया। ओके, आगे ये डैडी भी आपके साथ चलेंगे, क्योंकि आपके बिना डैडी का भी दिल नहीं लगता। डैडी ने भी अपनी प्रिंसेस को बहुत सारा मिस किया। शान ने उसके चेहरे को चूम लिया। दोनों बाप बेटी के लबों पर गहरी मुस्कान फैल गई और उन्हें साथ में मुस्कुराता देख बाकी सबके लबों पर भी मुस्कान ठहर गई। शान उससे वहाँ के बारे में, स्कूल के बारे में और इतने दिनों उसने वहाँ क्या क्या किया सब पूछने लगा और उसको अपनी बाहों में उठाए सबके पास चला आया। अंशु मुस्कुराकर उसको सब बताने लगी। वहाँ का माहौल आज खुशनुमा था। अंशु की वापसी ने घर की रौनक लौटा दी थी। सच ही कहते हैं, बच्चे घर की जान होते हैं। उनके वजह से ही घर में चहल पहल रहती है, वरना तो वो एकदम वीरान हो जाता है। कुछ देर वहाँ बातें चली, उसके बाद सब डिनर करने चले गए। आज कई दिनों बाद आरवी ने सबके लिए खाना बनाया था। शान ने जब पहला निवाला मुँह में डाला तो उसे ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा तृप्ति हो गई। आरवी के हाथों में बिल्कुल वही स्वाद था जो उसकी माँ के हाथ में हुआ करता था। पहले शान इसी वजह से उसका बनाया खाना देखकर ही वो भड़क जाता था, क्योंकि उससे उसे सावित्री जी की याद आ जाती थी और उनसे वो खफा था, शायद बहुत ज्यादा खफा था, इतना कि उनसे जुड़ी कोई बात याद नहीं करना चाहता था। लेकिन अब उसको एक सुकून सा मिलता था उसके हाथ का बना खाना खाने से, वो सुकून जिसकी तलाश उसको सालों से थी। शायद अपनी माँ को खोने के बाद से ही वो इस सुकून के लिए तरसता आया था और आरवी के उसकी जिंदगी में आने से उसका खोया सुकून लौटने लगा था। आज कितने दिनों बाद खाना खाते वक्त उसके चेहरे पर इतना सुकून और लबों पर हल्की मुस्कान फैली हुई थी। उसके अंदर आए बदलावों को सभी ने महसूस किया था और वो खुश थे कि धीरे धीरे ही सही पर शान बदल रहा है, फिर से मुस्कुराना और जीना सीख रहा है, शादी के रिश्ते को अब मानने लगा है, आरवी की इज्जत करने लगा है। ये सब पॉजिटिव साइन थे जो ये बता रहे थे कि जल्दी ही शान अतीत के उन अंधेरों से बाहर आ जाएगा जहाँ उसने सालों से खुद को कैद किया हुआ है। उसकी जिंदगी में खुशियाँ लौट आएंगी, वो फिर से पहले जैसे खुलकर जीने लगेगा और उन्हें पहले वाले शान को देखने का मौका मिलेगा जो वक्त के साथ कहीं गुम हो गया था। अंशु की बातें अब भी जारी थी और उसकी मासूमियत से भरी प्यारी प्यारी बातें सबके लबों पर मुस्कुराहट बरकरार रखने का काम कर रही थी। आरवी भी खुश थी, कितने दिनों बाद वो सबके साथ बैठी थी, उनसे बातें कर रही थी। बातों के बीच उन्होंने डिनर किया। उसके बाद शान अंशु और सुभाष जी के साथ बाहर गार्डन में चला आया। सुयश जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो वो अपने कमरे में चले गए थे। आरवी छाया और सौरभ के साथ मिलकर किचन का काम निपटा रही थी, साथ में दोनों उससे बात भी कर रहे थे। आखिर मिस तो उन्होंने भी किया था उसे। कुछ देर बाद शान अंशु को लेकर कमरे में चला गया और आरवी सुभाष जी को उनके कमरे में ले जाकर उनकी मालिश करते हुए शाम से उनके बारे में सब रिपोर्ट लेने लगी कि उसकी गैर मौजूदगी में उन्होंने कोई लापरवाही तो नहीं की, दवाई खाना मालिश कुछ छूटा तो नहीं। सुभाष जी मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे। आरवी ने सारी रिपोर्ट ली, फिर उनके तरफ मुड़ी और उनको घूरते हुए पुस्से से डपटते हुए बोली, डैड ये गलत बात है, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैंने आपको कहा था ना कि मेरे जाने के बाद आप अपनी सेहत को लेकर कोई लापरवाही नहीं करेंगे, फिर आप दिन में मालिश क्यों नहीं करवाते थे? बात ये थी कि इन दिनों सुभाष जी बस रात को ही मालिश करवाते थे, वो भी इसीलिए क्योंकि तब शान खुद उनकी मालिश करता था, दिन में वो बहाना मार जाते थे। वैसे तो उन्होंने शान को आरवी को ये बात बताने से मना किया था, पर उसने तो उनका सारा कच्चा चिट्ठा आरवी के सामने खोल कर रख दिया था, इसीलिए वो उन पर नाराज हो रही थी और उन्हें डांट भी रही थी। उसकी डांट सुनकर सुभाष जी मुस्कुराने लगे। उन्हें यूं मुस्कुराता देख उसने आँखें छोटी छोटी करके उन्हें घूरते हुए कहा, अब आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैं कोई जोक नहीं सुना रही हूँ, यहाँ मैं आपको डांट रही हूँ और आपको डांट सुनकर मुस्कुराना याद आ रहा है? क्या करें, आप जैसे हमें डांट रही हैं ऐसा लग रहा है जैसे हमारी प्यारी सी बेटी नहीं हमारी माँ हमारे सामने खड़ी है, बस इसीलिए हम खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं सके। अगर आपकी माँ यहाँ होती तो अभी आपकी पिटाई भी लगाती, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझसे बड़े हैं इसलिए मैं बस आपको डांट भी नहीं सकती हूँ। पर डैड ये गलत बात है, आप अपनी हेल्थ के साथ इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं ना कितनी शिद्दत से मुझे उस दिन का इंतजार है जब आप फिर से अपने पैरों पर खड़े होंगे, जब कहीं जाने के लिए आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी। अगर आप ऐसे लापरवाही दिखाएंगे तो कैसे ठीक हो पाएंगे? आरवी अब एकदम उदास हो गई थी। उसका उदास मायूस चेहरा देखकर सुभाष जी की मुस्कान भी फीकी पड़ गई। आरवी उनके पैरों के पास सर झुकाए उदास सी बैठी थी।
सुभाष जी ने उसके सर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आप उदास और परेशान मत होइए, आगे से हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे, अपना पूरा ध्यान रखेंगे क्योंकि हम भी अपनी बेटी की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। उनकी बात सुनकर आरवी ने सर उठाकर उन्हें उदास निगाहों से देखते हुए पूछा, सच बोल रहे हैं? मेरा दिल रखने के लिए झूठ तो नहीं कह रहे? हम अपनी बेटी से कभी झूठ नहीं कहते, सुभाष जी ने मुस्कुराकर कहा। तो आरवी भी मुस्कुराकर उठी। कुछ देर बाद उन्हें दवाई खिलाकर बिस्तर पर लेटाने के बाद वो वहां से चली गईं। टू बी कंटिन्यूड।